अहंकार तीनों की आहुति देनी है। जो कहने में बड़ा सरल है प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसीलिए हम एक देहधारी गुरु का सहारा लेते हैं। आपको अपनी आत्मा का साक्षात हो गया, तो फिर देहधारी गुरु की खाली एक रिस्पेक्ट रह जाती। जैसे हम लोग डॉक्टर बन गए तो जो हमारे टीचर थे उनकी हमें एक भी रिस्पेक्ट था, तो उन्हीं ने हमको इस लाइफ बनाया। उन्हें भी खुशी होती है और यही असली मोक्ष। बची हुई जितनी मोक्ष हैं पंडित कराते हैं वो सब धोखा है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम और खाली दिखावा है। समझे? अगर वैसे मोक्ष होती तो हमारे यहाँ के पंडितों ने पूरे हिंदुस्तान की मोक्ष करा दी, कोई शायद बाकी नहीं रहा। असली चीज यही, एक साधु महात्मा आए भीख मांगने, तो उसके परिवार के वो गए तो उन्होंने कहा नहीं हम भीख डाक से नहीं लेंगे। उनका लड़का गया, पत्नी गई, उन्होंने सबसे मना कर दिया, किसी से भीख नहीं। उस लड़के की साल दो साल पहले शादी होके आई थी, वो लड़की बड़ी परमार्थी थी और वो अपने पिता के यहाँ से संस्कार वो लेकर आई। उनके जो हेड थे उनने कहा अरे पागल है बेवकूफ कहीं का, भीख उप नहीं देने जाओ। उसने कहा नहीं पिताजी, साधु महात्माओं को घर से ऐसे नहीं लौटा देते, अगर आप आज्ञा दें तो मैं भीख दे के आती। वो गई, महात्मा जी ने अपने पास बैठा लिया, उसने पूछा कि बेटी तुम्हारे ससुर की उम्र वो कितनी उम्र है, उनका वो तो पैदा ही नहीं हुआ। उनको तुम्हारी सास की कितनी उम्र है, उनको उनकी उम्र एक साल की। उनका तुम्हारे पति की कितनी उम्र है, उनका उन्हें मैं गोद में खिला रही हूं। इनको ये ख्याल था यंग लेडी है, साधु महात्मा, उन बेटी तुम्हारी उम्र कितनी। उसकी असली उम्र 25 साल की थी, उन्होंने कहा 17 साल। जब वो आए महात्मा जी के यहाँ तब उन्होंने पूछा जिस शख्स ने ईश्वर का नाम नहीं लिया कभी भी, जैसे उनके ससुर थे, ऐसे आदमी को मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार ही नहीं। चाहे वो कितनी ही दुनियावी पोस्ट पर मालदार हो, जो भी हो, लेकिन उस शख्स को मनुष्य कहलाने का अधिकारी। और उसकी अगली योनि जानवर से बदतर होगी, क्योंकि जानवर कह सकता है कि प्रभु हमको विवेक नहीं था, लेकिन आदमी नहीं कह सकता। जैसे हम लोग पढ़ा लिखा आदमी गलती करते हैं तो उसे आसानी से नहीं माफ करते, लेवन कहते हैं चलो इसे तो भाई अकल ही नहीं, बेचारा बेअकल आदमी। उसकी सास ने एक साल से पहले से ईश्वर का नाम लेना शुरू किया, इसलिए उसने एक साल की उम्र उनकी बताई। और उन्होंने कहा इनको मैं गोद में खिला रही हूं, क्योंकि जब वो आई तो उन्होंने उनको ईश्वर का नाम बताया। अपनी उम्र 17 साल की इसलिए बताई, उन्होंने कहा साहब जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पिताजी ने मुझको ये नाम बताया, तब सुबह बराबर। तो आपके जीवन का वो हिस्सा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, वो आपकी असली उम्र है जिससे जिसमें आपने ईश्वर का नाम लिया है। बात बाकी हमारी उम्र का सब पार्ट बिल्कुल जानवर से बदतर। जिस तरह सरकारी नौकरी में हम बैकलॉग पूरा करते हैं, अगर हमने लेट नाम शुरू किया है तो हमें ज्यादा से ज्यादा समय नाम के लिए देना चाहिए। और यही बाबू जी कहते थे कि बेटे जान लगा दूं, समय और तंदुरुस्ती का ख्याल मत करो। एक काम किया है तो आपको लक्ष्य प्राप्त करना पड़ेगा। एक मनुष्य है जिसने पढ़ाई नहीं शुरू करी है, वो अनपढ़ कहलाएगा चाहे कितना नहीं पढ़ा। पैसे वाले भी होते तो रुक साहब वो पैसा मिल गया था किस्मत का, थे अनपढ़। जिसने ईश्वर का नाम शुरू किया वैसा उसने किसी स्कूल में एडमिशन ले लिया, जिसने नाम करके पढ़ाई शुरू की, वो ऐसा है कि जिसने दीक्षा ले ली। इनमें से कोई शख्स अभी पास नहीं हुआ है। आधे लोग यही समझते हैं कि दीक्षा ले ली हमारा बेड़ा पार हो गया। जिसने पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद इम्तिहान दिया वही शख्स पास। उन पास में से जिसके सबसे अच्छे नंबर आए मेहनत करके वो फर्स्ट। यही दुनियावी पढ़ाई में होता है, यही परमार्थ की पढ़ाई। परम पूज्य लाल जी महाराज साहब के इतने शिष्य थे, चाचा जी महाराज साहब के शिष्य थे, उनने भी यही कहा। कुछ फर्स्ट आए, कुछ सेकंड आए, कुछ थर्ड आए, कुछ पास हुए, बाद बाकी के लोग। ये कानून है, कुदरत है, जो बराबर चलता रहता है। तो जब एक रास्ता आपने अपनाया है तो कोशिश भी ये करिए कुछ लक्ष्य की प्राप्ति। हर शख्स कर सकता है, कोई शख्स ऐसा नहीं है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, लेकिन उसको प्रसाद करना पड़ेगा। गुरु से हर चीज को कह देना बड़ा अच्छा है, लेकिन ये अपेक्षा कर लेना कि ऐसा हो जाएगा बिल्कुल गलत ख्याल है। कहे इसलिए देते हैं कि आपने अपना ख्याल, ये ख्याल जो आपके दिमाग में था उससे आपको मुक्ति मिल गई। अगर उससे मुक्ति नहीं मिल गई तो समझिए आप जो है टोटल दुनियादार। गुरु प्रार्थना कर सकता है, ईश्वर के पैरेलल कोई अपनी सत्ता नहीं बना सकता। प्रार्थना वो जरूर करेगा लेकिन ईश्वर के हम लोग भी जो काम कह दिया उसके बाद कभी नहीं सोचते थे इसमें क्या होगा रिजल्ट हमारा, और वो दिमाग से हट जाती थी। अगर वो दिमाग में आपके बराबर बनी है तो इसका मतलब है खाली आप ये उम्मीद करते हैं कि वो एक नई सत्ता कायम करके ईश्वर के अगेंस्ट आपकी मदद करे, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन प्रार्थना वो सबके लिए करता है, प्रार्थना वो सबके लिए करता है। देखिए हम और आप उनके लिए तो सब खाली सत्संगियों की प्रार्थना नहीं करते, सबका भला करो, उसमें दुनिया के सब प्राणी होते। दुआ कुछ ही लोगों के लिए करता है, आशीर्वाद सेलेक्टेड लोगों। हमारा आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें किस तरह से आशीर्वाद प्राप्त। हमारा लक्ष्य प्रार्थना का भी नहीं होना चाहिए, दुआ का भी नहीं होना चाहिए, खाली यह हम किस तरह से आशीर्वाद का। और जो शख्स आशीर्वाद के पात्र बन गया वाकई में उसे कुछ नहीं करना, फिर गुरु उसके साथ साए की तरह, फिर गुरु उसके साथ साए की तरह होता है, उसकी रखवाली करता है। और यही प्रैक्टिकल रूप हमारे लिए आता है, यही प्रैक्टिकल रूप हमारे यहाँ आता है। पहले हम गुरु से प्रेम करते हैं और धीरे धीरे जब हमारा प्रेम बढ़ता जाता है तो दुनिया की चीजों से जो हमारे ख्याल की भार बटी है उससे हटा के सब चीज गुरु के उसमें कर ड्यूटी समझ के सब काम करते हैं और उसी पर टोटली डिपेंडेंट। और यही असली एंड हर पूजा का, चाहे वो कोई भी मत हो किसी का हो, गुरु से बेलौस प्रेम और उस पर 100% सरेंडर और फेथ करना। कहना आसान है। देखिए बाबूजी पास हुए, उन्होंने लाला जी महाराज साहब से पूछा हम क्या करें। ज्यादातर लोग अपने माँ बाप या जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछते हम क्या करें। क्या था उनको पूर्ण भरोसा, लाला जी महाराज साहब डॉक्टर थे भी नहीं, न उनकी अच्छी एजुकेशन थी। तुमने बेटे पेशे तो दो ही हैं, या तो सबसे अच्छा डॉक्टरी है या मास्टरी है, बात बाकी सब पेट पालने के जरिए। आपने सत्य बता दिया, हमारी उम्र 6 महीने ज्यादा है। उन्हें तो कौन पूछता। उसी वक्त ताऊ जी महाराज आए थे, वो उस वक्त जनरल मर्चेंट की दुकान करते थे। उनने पूछा भी नहीं, उनने कहा देखो डॉक्टर श्यामलाल डॉक्टरी पढ़ने चले जा रहे हैं, तुम भी इन्हीं के साथ चले। मनमते होते तो सोचते साहब हमारी दुकान है, दुकान चल रही है, शादी हो चुकी थी, पत्नी का क्या होगा। यह मन ने हमला नहीं किया। बाऊजी ताऊजी की उम्र में 6 साल का फर्क था। जब चेकिंग हुई तो बाऊजी का सर्टिफिकेट आया तो बाऊजी ने बताया ऐसा भाई उम्र 6 साल में कोई बात नहीं, यही उनने कहा था, कौन पूछता। ताऊजी के मन में ये दुविधा आई कि हम ओवर एज हैं, एक नेगेटिव थिंकिंग पूरी लाइन बना देती। उनने कहा साहब बड़ी गलती की हमने, अब हमारी लाइफ बेकार हो गई, हम निकाल दिए जाएंगे, आपने अपने गुरुदेव को नहीं सूचित किया। अल्टीमेटली एक फाइनल डेट दे दी गई कि इस दिन अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दिया गया तो आपको मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। तो आपने एक चिट्ठी लिखी कि हम आपके कहने से आए, हमारी उम्र 4 साल ज्यादा है और फलानी डेट दे दी गई है और हम निकाल दिए जाएंगे, हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। आपने कुल 4 लाइन में जवाब दिए कि बेटे तुम्हारे पत्र से तुम्हारे दिल की कैफियत का हाल मालूम हुआ, ये नहीं मालूम लिखा कि दुख या वो हुआ। ईश्वर पर भरोसा करके अपना असली सर्टिफिकेट सबमिट करो, कुदरत का तमाशा। आप डरते डरते सर्टिफिकेट सबमिट किया, उसने देखा ऊपर से नीचे ने उस सर्टिफिकेट को काट दिया। उन्होंने कहा भाई मिस्टेक इट हैज बीन रिटन इतने एक्चुअल इजी, डॉक्टरी पास हो गए। तो कहने का मतलब यह है गुरु पर पूरा भरोसा रखें, कब आप डिग जाएं कोई कह नहीं सकता, गुरु बेहतर जानता है। उससे कहने का ही मतलब यह है वो चीज़ आपके दिमाग से हट जाए, अगर उसका बोझ पाले हुए हैं तो वो पूजा में बाधक। और इसीलिए अभ्यासी कहते हैं सब जब हम आँख बंद करते वो ध्यान ज़्यादा नहीं लगा सकते, क्योंकि ध्यान में ये सब चीज़ें आके चारों तरफ से घिरती। ध्यान का मतलब ही है आप हैं और आपका गुरु है, बीच में कुछ भी नहीं। बीच बीच में जो ख्याल आते हैं वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, वो आपको नीचे मन की तरफ लाएंगे। तो फिर कहाँ आपको गुनहगार, तो आप हुए गुरु तो गुनहगार हुआ नहीं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सब चीज़ें, लेकिन लोग लिखने के बाद उस ख्याल से भी मुक्त तो नहीं होते, एक गुरु पर भी मुसीबत खड़ी कर देते हैं, अपेक्षा ये करते हैं कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट ईश्वर के अगेंस्ट खड़ी कर दे तो उसकी सब चीज़ें हो जाए। और दुनिया ही मांगेंगे, कोई परमार्थ नहीं मांगता कि सब हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, ऐसा हो जाए, तो वो कैसे संभव है। और यही चीजें ईश्वर के रास्ते पर बाधक है। इससे बचने का जरिया यही है कि बराबर सत्संग करते रहें। जितना सत्संग करेंगे तो धीरे धीरे हर शख्स को कितना ही कोई शख्स बैठ के ध्यान कर ले, उस शख्स को अगर वो रेगुलर सत्संगी नहीं होता है वो असल लक्ष्य तक पहुंची। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है बगैर सत्संग के विवेक नहीं होता और राम की कृपा के बगैर वो भी नहीं मिलता। जहां मिले जब मिले तो धीरे धीरे हमारे मन के विकार हटते जाते हैं। हर शख्स से जानता है कोई काम करेगा उसकी तैयारी करेगा, लेकिन क्योंकि हमको उन चीजों की एक एब्सोल्यूट सत्य है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, तो उस मरने की भी तैयारी करनी चाहिए हमें। 10 कदम सफर के लिए जाते हैं, 10 कपड़े भी रखते हैं, सब सामान भी। मरने की सबसे अच्छी तैयारी यह है कि सिवाय ईश्वर के नाम के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। न लड़का जाएगा, न बीवी जाएगी, न ये मकान जाएगा, कोई चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, तो हम क्यों चिंता करते हैं? ये सब ईश्वर की दी हुई चीजें हैं और सब यहीं रह जाएंगे। आप होंगे, एक गुरु होगा और कोई चीज नहीं। तो हर व्यक्ति को उस सत्य को समझ के हर वक्त तैयारी करनी चाहिए। ये कोई नहीं कह सकता अगली सांस आएगी कि नहीं आएगी। अचानक तैयारी नहीं होती। हर वक्त कहते लोग गंगा जल मुंह में डालो, राम का नाम लो। किसी को आपने देखा आता है? उस वक्त सब चिल्लाते हैं राम राम कहो, लेकिन राम कहाँ से आ जाएगा जब आपने उसे कभी याद ही नहीं किया। गंगा जल मुंह में डालो, फोटो दिखाओ, ये तभी आएगा जब पहले आपके रोम रोम में राम का नाम। सीता जी हनुमान जी के राम की पत्नी थी, सोने का हार फेंक दिया उन्होंने, कहा उन्होंने कहा इसमें राम नाम नहीं। दुनिया वाले जितने थे हर एक ने कहा बंदर का स्वभाव होता है। हाल ही भगवान राम ने कहा पूछो भी तो भाई आखिर इसने क्यों फेंक दिया, उनका प्रभु इसमें आपका नाम ही नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे हैं, उन्हें हृदय खोल के दिखा दिया कि रोम रोम में राम का नाम है। जब रोम रोम में जब बराबर आप रटते रहेंगे तब फिर वो मालिक आपका दया करेगा। उसको हमने देखा नहीं है, गुरु को हमने देखा है, तो उसी की याद करते, उसी की याद करते रहिए, नाम का जाप करते रहिए, रूप का ध्यान करते रहिए। कोई वजह नहीं है वो ना दे, और वो वक्त आखिर में आपके साथ। बची हुई सबकी कैटेगरी वही होगी, किसी ने स्कूल में एडमिशन ले लिया, किसी ने किताबें खरीद ली पढ़ा नहीं, किसी ने इम्तहान नहीं दिया, किसी ने दिया तो फेल हो गया, कोई पास नहीं हुआ, लेकिन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से नहीं। वो वही होगा जो खुली पहले बंद आंखों से ईश्वर को देखे। जिस वक्त हम आंख बंद करते हैं तो हमें अपने भीतर दिखाई पड़ता है, भीतर वो दिखाई पड़ता है जो हम अपने मस्तिष्क में पाले हुए हैं। और फिर इतना नाम को भर दीजिए, खुली आंख हो, सब नजारे आपके सामने हो, सिवा आपको उसको छोड़ के और कोई चीज, फिर आपको कोई धोखा नहीं है, फिर आपको कोई भी धोखा नहीं है। फिर उन लोगों को देखिए, लाला जी महाराज साहब अपनी शादी में बैठ के नौशे के रूप में और इंडिया नाच रही, तो उन्हें किसी का गाना वो नहीं, खाली उनको अपने गुरुदेव दिखाई पड़ा रहे थे 72 घंटे तक। तब उन्होंने लिखा है 72 घंटे तक कोई अपने गुरु के ख्याल में बराबर बना रहे उस शख्स की नस्बत अपने गुरु से परमानेंट जुड़ जाती। तो इससे सस्ता कौन सा दवा हो सकता है कि 72 घंटे तक उससे। कोशिश यही करिए कि इस चीज को, इस विद्या को, जो कि इन बुजुर्गों ने बड़ी सहूलियत से दी है, उसको समझ के अपने जीवन को सफल करें। सबसे मतलब रखा, लाला जी महाराज साहब की इतनी बड़ी फैमिली थी, उनने सबकी शादी भी किया, ब्याह था, मौतें भी उनके सामने हुई। जब भी उनके हुई तो हम लोग की क्यों नहीं हुई। ताऊ जी महाराज की इतनी बड़ी फैमिली थी, भाऊजी महाराज साहब की इतनी बड़ी फैमिली थी, लेकिन जो उन्हें किसी से मतलब नहीं था, उन्हें किसी से मतलब नहीं था, अपनी ड्यूटी करके हर शख्स से। गुरुदेव का आखिरी वक्त यही था कि बेटे इन बदमाशों ने हमें कहीं का ना रखा होता अगर लाला जी महाराज का हमारा। भाऊजी का बेटे अब सिवा लाला जी महाराज साहब के साथ छोड़ के और कोई भी नहीं। कभी नहीं कहा था हमारे साथ मौलवी साहब हैं, चाचा जी फलाने हैं। तो जितने ये लोग कहते हैं उन्हें ये सोचना चाहिए कि उनकी दया है कि उनके दर्शन करा दिए। लेकिन ये आप सोच लें कि नहीं साहब, उनसे आपको फायदा होगा, वो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज। गाइडेंस हमेशा आपको किसी जीवित आदमी से लेनी पड़ेगी, किसी जीवित आदमी से लेनी पड़ेगी। और जीवित आदमी भी वही होना चाहिए जिसको गुरु अपने भाई। जब बाप जाता है तो कहता है ना कि साहब तुम इसको मेरी जगह समझना, तुम इनसे मदद ले लेना। ये काम सब दुनिया में भी हम लोग करते हैं। और ज्यादातर आपने देखा जिसकी जिम्मेदारी वो सौंपते हैं वो ध्यान रखता है। अब आपने किसी और को सहारा ढूंढा तो अपना समय नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपना समय नष्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। किताबों से गाइडेंस मिल सकती है, लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। किताबें भी खरीद ली आपने, उन्हें पढ़ा नहीं, पढ़ा भी तो अमल नहीं किया, तो फायदा क्या हुआ। फायदा तो उसका कुछ हुआ नहीं। उन्हें पढ़िए भी, पढ़ने के बाद जैसे उसमें लिखा है उसमें अमल भी करिए। तो कोई वजह नहीं देते जिन लोगों ने लक्ष्य की प्राप्ति ना की हो उनको वो। लेकिन लोग वो वही थे जिन जिनके के जिन्हें जीवन भर अपने गुरु का सहारा लिया, उनकी याद की और जैसा उनने कहा वैसा वो करते। और यही असली लक्ष्य होना चाहिए, यही असली कोशिश होनी चाहिए। जो भी चीज आए इसमें क्या होता है, जब आप गुरु से कह देते हैं तब तक उसे बराबर ध्यान रहता है। अगर जिन लोगों ने लाला जी महाराज साहब की किताब पढ़ी हो तो एक साहब के बड़ा पेट में सत्संगी भाई थे, पेट में बहुत दर्द हुआ, बहुत कोशिश की, बड़ी दवाई ली, कोई रिलीफ नहीं हुआ। आखिर में जब हर तरह से निराश हो गए तो उन्हें एक चाल लाई लाला जी महाराज साहब को चिट्ठी में लिख दी। आपने चिट्ठी लिख के डाली और घंटे भर भी बाद में उनको आराम आना शुरू किया। और धीरे धीरे ठीक हो गया, भूल भी गए। जब आप मिले तो आपने कहा पंडित जी वो आपके पेट में दर्द हो रहा था वो कैसा है। उनका वो तो हमने चिट्ठी डाली, उनने कहा वो तो आपके तो ठीक हो गया, हमारे आज तक पेट में दर्द हुआ हो रहा है और तकलीफ आज तक। उनके जब दर्द हुआ था तो आपने सूचित कर दिया और रिलीफ हो गए तो ये भी नहीं सूचित किया कि हमारे पेट का दर्द जाता। अक्सर बाबू जी कहते थे बेटे ख्याल यही है कि जो ये इनके पेट का वो था वो इसी का वो था। तो देखिए गुनहगार कौन हुआ, खाली इसलिए कि आपके दिमाग से वो ख्याल हट जाए, और अगर वो ख्याल आपको दिमाग पर रहता है और आप उसकी सूचना नहीं देते, ये भी एक बेअदबी है। ऐसा नहीं है कि गुरु से आपने कह दिया और सब हूबहू पैरेलल गवर्नमेंट उसने ईश्वर के अगेंस्ट बना ली कि आपके दुनिया के सब काम और वो होते गए। जब इस दुनिया भोगने आए तो आप अपने भोग भोगेंगे, हम अपने भोग भोगेंगे, उसमें कौन सी वो, उनसे हमें शक्ति मिल जाती है, हमारी बर्दाश्त करने की कुव्वत होती है और सहूलियत से वो बीत जाता है, सहूलियत से बीत जाता है। और यही असल चीज है जिसको हर अभ्यासी को करना चाहिए। कोई उम्र का किसी को भरोसा नहीं, इसलिए अच्छा ये है जब तक हाथ पैर चलते हैं, शरीर मेहनत करता है, बुढ़ापे में जवानी की कमाई को खा सकते हैं, नई कमाई नहीं कर सकते। इसलिए कोशिश यही करिए जब तक हाथ पैर चलता है, तब तक बाबूजी कहते थे बेटे जान लगा दो सब कुछ। देखिए आपके सामने कालिबन 54 का भंडारा हिस्ट्री में सबसे अच्छा बनारस का। धीरे धीरे आना जाना कम हुआ, साल में हुआ, साल में लोग बैठते रहे, वही व्यक्ति हैं, कोई नए नहीं है, उन्हीं के बच्चे हैं। फिर ये हुआ रेगुलर सत्संग, सब खत्म हो चुका था और सिवाय एक वो हिस्ट्री रह गई थी कि हाँ साहब बड़ा अच्छा भंडारा हुआ, वो फिर से बैठने लगे। फिर से तो सत्संग तो बड़ा जरूरी है, और हफ्ते में डेली हो तो अच्छा है, नहीं हो तो हफ्ते में तो एक बार तो जरूर होना चाहिए। तो जितना करते चले जाएंगे वो सब इस रास्ते की पोख की और उस पर होती चले। आप जरूरी नहीं है कि आप एक ही वक्त में करें, ध्यान के लिए दो वक्त हैं जो नियम बनाते हैं, सुबह के वक्त इतना ही बहुत है कि आप एक प्रार्थना जिस पर प्रेम भरा हो, छोटी से छोटी हो, पढ़ लीजिए और ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान का बेसिक मतलब यही है, जो असल सेंस हमारे यहाँ है कि आप हैं और आपके गुरु का ध्यान है, उसी में बिल्कुल आप मस्त हैं, आपको कोई खल नहीं है। जितने ख्याल आते हैं वो सब बीच बीच का टाइम वो ध्यान के अंदर क्रिया में नहीं आता, और उसके बाद जैसे कोई काम हो जाता है, ईश्वर को शुक्रिया करते हैं, तो चार लाइन उसके उसमें और कर लीजिए और आप चले। जितने जाप हैं, चाहे वो गायत्री मंत्र का है, चाहे दारुल शरीफ का है, आप दोपहर में, रात में, जिस वक्त भी खाली हो, ये मन को व्यस्त करने के जरिए है। ये खाली मन को एंगेज करने के लिए, मन को आप किसी वक्त भी खाली रखेंगे वो शुरू से उसका भाव नीचे की तरफ होता है, वैसी बातें सोचेगा, वो बराबर जाएगा। तो उसको व्यस्त करने के लिए ये है कि हम जाप करते रहे। किसी को धोखा नहीं है, हम लिख के दे सकते हैं कि जो अपने गुरु की रूप का हर वक्त ध्यान करता रहे, और आदमी लोग ओम शब्द का ध्यान करते रहे, लेडीज राम नाम बराबर रटती रहे, खाना बना रही, रोटी बना रही हैं, इसके अलावा कोई धोखा नहीं है। लेकिन ये कि आपने 10 भंडारे अटेंड कर लिए और सत्संग रेगुलर नहीं किया तो धोखा ही धोखा। सत्संग किया, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया तो धोखा ही धोखा। दो ख्याल रखने पड़ते हैं, तो जो गुरु कहे हम वो मान ले, हमसे कोई काम ऐसा ना हो जिससे गुरु को दुख पहुंचे या सिलसिले की बदनामी। और यही बाबा जी ने आखिरी ने कहा, बेटे कुछ मत करो तब भी वो दया करके माफ कर देंगे, कोई काम ऐसा मत करना। फिर उन लोगों को देखिए, ओमकार भाई साहब ने गलती की, उनके सगे भतीजे, तो उन्होंने मेरी जिंदगी में तुम वहां नहीं बैठ पाओ, और देखिए माता जी ने कहीं नहीं बैठने दिया, सब कुछ मरबरी हुई। उन्होंने कहा मेरे जीवन में अब तुम इस लायक नहीं रहेंगे, वहां जाके लाला जी महाराज साहब को। फिर उनको देखिए जिनने मतलब वो किया, बाबू ब्रजमोहनलाल जी की बड़ी इज्जत करती थी, चाचा जी महाराज साहब उनकी बड़ी इज्जत करते, सब कुछ हो, तो उन्होंने कहा ना ये गलती तुमने की एंड यू विल हैव टू सफर इट। तो उस चीज को जिससे किसी किस्म की वो हो उसको छोड़ते चले, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप साथ देते हैं तो उससे ज्यादा गुनहगार है बनिस्पत उसके, एक आदमी को और शय दे रहे हैं कि गलती करे। तो किसी को देख लीजिए, तीन चीजों का लोगों ने इस रास्ते में ध्यान रखा कि हर वक्त अपने गुरु की याद को बराबर बनाए रहे, उसको काल को बराबर बनाए रहे, नाम का जाप करते रहे। लेडीज के लिए परम पूज बाबू जी महाराज साहब ने ये जो लिखा है ये हु बहु, तो उन्हें कुछ नहीं करना है, खाली उनका सरल स्वभाव हो, घर के उनका वातावरण बड़ा शुद्ध हो, अपने बच्चों की बड़ी अच्छी देखभाल करें। जब हमने उन्हें ईश्वर के नाम के बारे में बताया नहीं तो वो कहाँ गुनहगार है, गुनहगार तो माँ बाप है ना, जो पहले ही दिन से उन्हें बताया बेटे टीवी देखो ये देखो, और जब वो सर पर पानी उतर गया तब हम उससे कहते कि नहीं बेटे अब इसका राम का नाम लो, कैसे वो ले सकता है। और उन्होंने कहा दूसरे उनके घर से कोई भूखा न जाए। उन लोगों के राम नाम सबसे अच्छा, ये प्रैक्टिकल है जो कि हमने देखा इन बुजुर्गों ने लाली जी महाराज साहब की डेथ के बाद। 19 साल माता जी ने भंडारा चलाया, जबकि न उन पर एक पैसा था न कुछ था, न कोई मैन पावर थी, न किसी फतेहगढ़ वाले ने कोई मदद की। बहू ब्रजमोहन लाल जी की वाइफ ने जो कि बहसियत बहू की आई 54 साल तक भंडारा करता, ये उनकी हस्ती नहीं, ये लाला जी महाराज साहब का आशीर्वाद और हस्ती थी जो अब तक कायम कर रही। लेकिन वही किया जो लाला जी महाराज चाहते थे। जो वो अपने मुंह से बता रही थी कि भैया एक बढ़ते दिन हमने नई नई शादी होके आई थी, बड़ा गर्म लगता था, तो एक सत्संगी भाई से कहा भैया हमको एक हाथ का पंखा ला दे रहे जिसकी कॉस्ट भी उस वक्त 6 दाम से ज्यादा नहीं होगी। होते होते ये बात लाला जी महाराज साहब को पहुंची। उन्होंने कहा बेटी डॉक्टर चतुर्वेद साय जी ने सिफारिश की, इसलिए हम तो उसको घर में लाए अपने, अगर तुम ही लोगों से अपनी सेवा कराने लगी तो दूसरों की सेवा कौन करेगा, हम तो तुम्हें सेवा के लिए आए। इतने साल आप भंडारे में गए हो, किसी से उनने कभी कहा पैसा दे दो या कोई दे दो? यानी जिस रोज से वो रेजिमेंट करती थी एक फूटी कौड़ी उस घर पर नहीं होती थी, और भंडारे का टोटल खर्चा 2 लाख रुपए आता है, तो कितनी बड़ा आशीर्वाद था। इससे बड़ा आशीर्वाद क्या चाहते हैं। तो खाली ये था कि कोई ऐसा मत काम करे, कोई शख्स ऐसे नहीं कह सकता कि जिससे उनने कभी कोई कहा हो कि हमें फाइनेंस की मदद कर, जबकि एक्यूट नीड रहती थी। बस एक भरोसा था कि सब वीणा लाला जी महाराज साहब पार, हमें कोई कंसर्न नहीं कि हमसे आपसे कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे गुरुदेव की या सिलसिले की बदनामी हो। और जितनी मेहनत कर पाए उतनी मेहनत करें, खाली ये कि हम सब सत्संगी हो गए, हमने सब दीक्षा ले ली, कभी भंडारे पे चले गए कभी नहीं गए, दुनिया के कामों से वरीयता आपको देनी पड़े, नहीं देंगे ईश्वर बेहतर जानता है क्या हो। तो उन लोगों को कोई धोखा न था न है ना हो। जिस शख्स ने भी जो भी काम किया उसका देख लीजिए, लाला जी महाराज साहब का भाई श्यामलाल तुमने हमारे लिए इतना वो किया, चलो ईश्वर करेगा तुम्हारी औलादों पर भी गाड़ी रहेगी। देखिए हम लोगों पर भी थी, बच्चों पर भी है, तीसरी पुष्ट है, कौन के ठेका ले सकता है। ताऊ जी के लड़के पाठ तक नहीं रहे, वो सब डॉक्टर थे, वो ऐसा नहीं था कि वो लोग भी वो नहीं थे। तो आशीर्वाद एक ऐसी चीज है जिससे, और जब वो खुश होता है किसी एक को नहीं फिर पूरे परिवार को आशीर्वाद देता है, पूरे परिवार को देख जानते। फिर देखिए भाव जी ने पे उस लाला जी महाराज साहब की चिट्ठी में लिखा है कि मैं श्री किशन जगमोहन और तुम्हारी तरफ जान के रागे नहीं होता हूँ, जो तुम ऐसे हो जिन्हें मैं धक्के दे के भी बार करूँ तो मुझे नहीं छोड़ सकते, अपने दिल से पूछो। दूसरों की दिल जो इसलिए करता हूँ, कुछ भाग गए कुछ भागने को तैयार बैठे। चाचा जी महाराज साहब ने लिखा है कि बाबू ब्रजमोहन बिरजू ज्योति और इनमें क्या फर्क है, ये तो हमारे लिए वैसे ही है जैसी है। तो क्या था कि उनका ये जो भी था अदब था, उनमें कोई कैटेगरी थी जो उनने अपने लड़कों के सवाल उन्हें ठीक किया, सबको तो नहीं किया, इतने लोग थे। तो जो अच्छे गुण हैं उनको अपनाते चले जाइए उनके। और यही है कि जो रास्ता दिखाया है उस पर चलते चलते। असली जो ध्यान का पीरियड है वो दो वक्त जरूर होना चाहिए, ताकि एक नियम रहे आपका। यानी जब दो लाइन की प्रार्थना हमारे गुरुदेव ने बताई थी तब भी ये कहा बेटे, हमने कहा ताऊ जी मान लीजिए कभी रह जाए तो उन्हें खाना मत खाना बेटे। 7 बरस की उम्र थी, ऐसे कोई बच्चा नहीं, उन्हें बस जिस रोज ना हो बेटे खाना मत खाना। लेकिन साथ साथ में ये है, प्रसाद भी उन्हीं के पैसे से, उन्हीं के कपड़े पहन के दीक्षा दी है। हमने तो इस युग में किसी को नहीं देखा था, उन्होंने अपने पैसे से प्रसाद खाया। उन्होंने कहा लो बेटे नहा दोगे, तो उनका ताऊ जी यही है उनका, तो उन्होंने कहा अच्छा हमारी वो धोती उठा ला उसे पहन लो बेटे, प्रसाद भी पैसे से। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि बेटे ना, और इसीलिए छोटा नियम बताया था कि ये है तो मुश्किल से सब प्रार्थना दी 2 मिनट की थी, पहले एक वक्त बताई फिर दो। नियम का मतलब ही है कि उसे आपको छोड़ना नहीं है। उनका भाई सुबह नहीं पूजा कर रहा है तो आप कहिए तो खाना क्यों खाया भैया, जब नहीं कर पाए खाना भी छोड़ देना चाहिए, खाना तो नहीं छोड़ा आपने। तो दुनिया तो छोड़ नहीं सकते, परमार्थ ही छोड़ सकते हो, क्योंकि ईश्वर पर हमें विश्वास ही नहीं है, वो कुछ देख रहा है। नियम दो वक्त होना चाहिए, जो गुरु है गुरु के बाद आप है। और यही चीज गोपियों ने उद्धव से कहा कि तुम योग को रियलाइज ही नहीं करोगे कि तो प्रेम क्या चीज होती है, तुम्हारी मस्ती आती है जाती है, हकीकत नहीं है हमारी, हम हर वक्त कृष्ण के ध्यान मस्त रहते हैं, ये हकीकत है। तो जब 24 घंटे आप गुरु के ख्याल में रहेंगे तो गुरु तो वैसे ही हर वक्त आपके साथ है। फिर वो गुरु आपकी चिंता करता है, आपको गुरु की चिंता याद की जरूरत नहीं। और यही कबीर साहब ने लिखा था, अभी हम ही राम राम कह रहे हैं, जब राम कबीर कबीर कह के याद करते रहे तब हमारा। कोशिश यही करिए किस तरह से इसी जीवन में, अगले जीवन का कोई भरोसा किसी का नहीं। और यही हमारे गुरुदेव कहते थे, एक जीवन का जन्म का ठेका लेना तो हमसे ले सकते हो, और जहां तबीयत जिसकी आए चलेगा, पता नहीं किस जन्म में मिले हो, किस जन्म में कितने हो। लाला जी महाराज साहब ने लिखा, तुम मेरी बिछड़ी हुई आत्मा, तुम पता नहीं किसके जन्म में बिछड़ी रही हो। तो किसको अपना जन्म याद रहता है, तो जो कुछ करना है वो आपको प्रेजेंट में ही करना है। इसीलिए हमारे यहाँ भूत को भूल जाओ, हर शख्स से गलती भी हो गई, हर शख्स गलती भी करेगा, गुनाह भी करेगा, लेकिन जो कर लिया उसे भूल जाओ, उनके बारे में सोचोगे संस्कार बन जाएगा। वर्तमान को अच्छे से अच्छा बरतो, भविष्य अपने आप उज्जवल होगा। 99% लोग आगे की सोचते हैं बुढ़ापे में क्या होगा, इसमें क्या होगा, वर्तमान की उन्हें चिंता ही नहीं, या पीछे की सोचते हैं साहब हमसे ये गलती हो गई, हमसे ये गलती हो गई, हमने ये किया। तो खाली वर्तमान को, जिस रोज से आपने लिया उसी रोज से करते रहिए, पीछे अपने आप खत्म हो जाएगा। जिस चीज को खाद पानी नहीं मिलेगा वो बीज अपने आप सड़ के खत्म हो जाएगा। जब आप उसके बारे में सोचते रहेंगे तो ये खाद और पानी है वो बराबर उपजेगा। और जब आपको अपना गुरु खुली आंख दिखाई पड़ने लगे तब ये समझ लीजिए आपका अभ्यास सही है, बंद आंख की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बची हुई चीजों का फल मिलेगा, अच्छा किया अच्छा फल मिलेगा, बात का है आगे का वो मिल जाएगा, लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डिफरेंट एफर्ट्स करनी पड़ेंगे। जिस तरह फर्स्ट आने के लिए हर स्टूडेंट को अलग से एफर्ट करनी पड़े, और यही आपका मतलब है।